الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ درود پڑھے گا محمد اللہ علیہ وسلم حضرانِ محترم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کو اپنا سنامِ کلام قرار دیا ہے اور اس کے ذیل میں کل سے آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کیا جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے سے رشد عطا کیا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کا علم رکھتے تھے اس کا علم رکھتے ہیں اور اسی کے ذیل میں بیان ہوا یہ تو من قبل کو یہاں بیان کیا اس میں آیت اللہ جوادی عاملی نے دو احتمال دیے کہ من قبل سے مراد نبوت سے پہلے بھی ہے اور من قبل سے مراد پھر موسیٰ اور ہارون کے تذکرے سے پہلے کیونکہ ابراہیم کا تذکرہ ہے اس لیے اس کو بیان کیا گیا اور بھی بہت سے احتمالات ہیں ظاہر ہے ہمارا موضوع اس آیت کو اپنا موضوع کلام بنانے کا رشد کا عنوان ہے اسی سے ہم نے جو چیز نکالی انسانوں کی تین کیٹیگریز کل آپ کے سامنے بیان کی قرآن کریم نے بھی مختلف کیٹیگریز کو درجات کو طبقات کو بیان کیا جیسے سورہ واقعہ کے اندر والسابقون السابقون اولئک المقربون واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب المشامتی ما اصحاب المشامہ سابقون سبقت لے جانے والے دائیں ہاتھ چل پہ رہنے والے اور بائیں ہاتھ والے تینوں کو خدا نے بیان کیا ہے ظاہر تینوں کی درجات مختلف ہیں جو بائیں ہاتھ والے جن کو اصحاب شمال کہا گیا یعنی وہ اہل جہنم ہیں اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ نیکی والے ہیں لیکن ان کا درجہ سابقون سے کم ہے اور سابقون وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کے درجات مختلف ہیں اسی طرح جب سورہ حلتا کے اندر ہم دیکھتے ہیں سورہ حلتا کے اندر ابرار کا تذکرہ خداوند عالم کرتا ہے اس کو آج میں صرف سرسری بیان کر رہا ہوں اگر موقع ملا آئندہ ایک دو دن کے اندر اس کو تھوڑا سا اور کھول کے شاید بیان کر پاؤں اگر موضوع سے متعلق بن گئی بات ابرار کے تذکرے میں خداوند عالم نے تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ایک وہ ہیں کہ جن کو ایسے پیالوں سے پلایا جائے گا کہ جس کا مزاج کافور کا ہوگا اگلے مرحلے میں کہتا ہے کہ ایک وہ گروہ ہے کہ جس کو ایسے پیالے سے پلایا جائے گا اور وہ ایسے پیالے سے ان کے سامنے فرشتے یا غلام لے کر آئیں گے جس کا مزاج زنجبیل کا ہوگا ادرک کا ہوگا اور تیسرے موقع پہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ایک ابرار کا گروہ وہ ہے کہ جن کو خود ان کا رب اپنے ہاتھوں سے پلائے گا سقاهم ربهم شرابا طهورا ان کو ان کا رب خود پلائے گا یہ مراحل ہیں یہ جو مراحل قرآن کریم میں عزیزان محترم قرآن کریم ہم سب کو دعوت فکر ہمیشہ دیتا ہے کیونکہ قرآن کریم ہی فکر کی عمل کی دعوت دینے والی کتاب ہے کسی بھی جگہ شاید اس چیز کو بہت زیادہ پسند نہ کیا جاتا ہو کہ انسان بہت زیادہ سوالات کرے معمولاً استاد شاگرد سے یہ چاہتا ہے کہ شاگرد سن لے تسلیم کر لے اور اس کے عمل کرے یہ اسلام کا وتیرہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ جب تم تک بات پہنچے تو اس پر غور کرو فکر کرو اس کے نتیجے میں تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہو تو سوال پوچھو لیکن سوال پوچھو کس سے ہر کسی سے نہیں سوال پوچھا جا سکتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَتَعْلَمُونَ जो अहले जिक्र हैं उन्हीं से पूछो, यानी जिनको हमने ये जिक्र, जिक्र से मुराद कुरान करीम को कहा गया हाजर जिक्र मुबारक, ये जिक्र मुबारक जो अहले कुरान हैं, जो कुरान के वारिस हैं, उनसे पूछो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आएंगे। और अगर तारीख में कभी देखना चाहो कि अहले जिक्र कौन है, तो मिंबर से देखना किसकी आवाज आई थी, सलूनी सलूनी कबला तुम को, जिसकी आवाज तारीख के अंदर सब्त हो गई हो, समझ जाना यही वो कबीला है, यही वो खानदान है, यही वो अफराद हैं कि जिनके पास हर सवाल का जवाब होगा। ना फकत सवाल का जवाब होगा, ये वो हस्तियां हैं कि तुम्हारे आने से, आने के बाद तुम्हारे सवाल करने से पहले तुम्हारा सवाल भी बता देंगी, उसका जवाब भी बता देंगी। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की अजमत है, अहले बैत का दामन खुदा ने हमें दिया। बस अजीजों, हम और आप इस एतबार से खुश नसीब हैं, लेकिन कल जो बहस आपके सामने शुरू की कि इंसानों की एक एतबार से तीन ग्रोह और भी हैं, जिनमें हमने कल बयान किया इस आयत से मुताल्लिक चीज़ों को लेकर कि इंसानों में एक ग्रोह वो है जिसको राशिद कहा गया है कुरान करीम के अंदर, ही राशिद हैं, राशिदीन हैं और अहले रुश्द हैं। रुश्द यानी जिनकी तरक्की होती है, जिनके यहाँ आगे बढ़ने के इम्कानात होते हैं। दूसरा ग्रोह राकेदीन, रुकूद से यानी जुमूद से। एक ग्रोह वो होता है कि जो पढ़ने के अमल को छोड़ देता है, एक हद पर पहुंचने के बाद तवक्कुफ कर लेता है, रुक जाता है, सोचता है कि जितना मैंने हासिल कर लिया उतना मेरे लिए बस, इसके बाद मुझे मजीद जरूरत नहीं। ये राकिद है, रुकूद से। आप पानी को भी कहा जाता है फारसी में आबे राकिद, यानी रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी। और एक ग्रुप वो है कि जिसको कुरान करीम में और उसकी तालीमात के मुताबिक कहा गया साकितीन, अहले सुकूत में से हैं। और कल भी ये बात बयान की कि जो बीच का हिस्सा है यानी जो राकिद हैं, अगर ये अपना सफ़र तय करते हुए अहले रुश्द की तरफ ना बढ़ें तो इनका लाजमी नतीजा सुकूत है। राकिद भी सुकूत की तरफ जाएगा, और इसको कल मिसालों से बयान किया था, जो अफराद कल मौजूद नहीं थे, फकत इस बहस को जहन में बिठाने के लिए मिसालों को दोबारा आज कोट करना चाहूँगा कि अहले रुश्द में अगर रखना चाहें तो हम हुर को रखेंगे, वहाब कल्बी को रखेंगे, ज़ुहैर इब्ने क़ैन को रखेंगे। ये अहले रुश्द हैं जिन्होंने मौका पाया रुश्द करने का, तरक्की करने का, जैसे ही उनके सामने आगे बढ़ने का मौका आया इन्होंने उस मौके को अपने हाथ में लिया और रुश्द करके आगे बढ़ गए। राकिदीन वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप को समझा कि हम जहाँ पर हैं सही हैं, हमें ना इधर जाने की ज़रूरत ना उधर जाने की ज़रूरत, नतीजे में सुकूत तक गए। इसके अंदर मिसालें रखी थी, अब्दुल्ला इब्ने उमर की मिसाल रखी थी और उबैदुल्ला इब्ने हुर्रे जोफी की मिसाल रखी थी, और भी बहुत सी मिसालें आ सकती हैं। तीसरी, इसमें खुद आज इसी मिसाल के अंदर, कल मैंने उमर इब्ने साद को साकिदीन में कहा था, आज मैं उमर इब्ने साद को थोड़ी देर के लिए दोबारा इस बीच वाली कैटेगरी में रखूँगा कि उमर इब्ने साद भी राकिदीन में से था। तवज्जो कीजिएगा, मैं इसकी वजह भी बयान करूँगा। और जो साकिदीन है अहले सुकूत में से हैं, वो कौन है? वो यजीद हैं, वो शिमर हैं, वो खुली हैं। इनके अंदर रुश्द करने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। बस इंसान तीन हिस्सों के अंदर, तीन कैटेगरीज में ज़िंदगी गुजार रहा है। मुझे और आपने अपना फैसला करना है कि मैं और आप इन तीन ग्रोहों में से किस ग्रोह के साथ खड़े होते हैं। इन तीन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। राशिद हैं या अहले रुश्द होंगे, राकिद हैं रुक जाने वाले होंगे, उस पर तवक्कुफ कर लेंगे, या खुदा ना खास्ता अहले सुकूत में से होंगे। उमर इब्ने साद को आज मैंने इस कैटेगरी में क्यों रखा, राकिद में क्यों ले आया? कल मैंने उसको साकिद में बयान किया था, वो गया सुकूत किया, लेकिन उसके पास एक ऐसा जौहर था करबला पहुंचने से पहले तक कि जब उसको ये कहा गया कि तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ कयाम कर, तो वो तजब्जुब में पढ़ा, उसने सोचना शुरू किया, शिमर क्यों नहीं है इस तरफ, खुली क्यों नहीं है राकिदीन में, वो क्यों साकिदीन में? इसलिए कि जब लश्कर को जमा किया गया उन्होंने लम्हाभर की देर नहीं लगाई, हुसैन के खिलाफ फौरन निकल आए, इमाम हुसैन के खिलाफ फौरन लश्कर की तैयारी की, लश्कर को जमा करना शुरू किया। उमर इब्ने साद सोचता रहा, काफ़ी देर सोचा, काफ़ी लम्हात उसने सोचने में लगाए। यहाँ डॉक्टर अली शरीयती का एक जुमला बयान करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि हम जैसे इंसानों को जो खौफ अपने बारे में लाहक होना चाहिए वो यही कि हमारा ताल्लुक नहीं उमर साद की कैटेगरी से ना हो, दूर पड़ेगा। कल वाली कैफियत वापस आई उसके लिए। मेरे इख्तियार में नहीं आ लगे, मैंने दवा भी इस्तेमाल की।
محمد و آل محمد صلوات.
हम और आप ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कैटेगरी में जा सकते हैं और ना ही शिमर और यजीद की कैटेगरी में. हम और आप अगर कहीं खड़े हो सकते हैं तो कौन सी कैटेगरी है? उमर इब्न साद की. तवज्जो की
मोहम्मद
सलावत. इसलिए कि उमर इब्न साद तजब्जुब का शिकार रहा, गौर करता रहा, सोचता रहा. हमारा भी इस दरमियानी हिस्से में सफ़र कर रहे होते हैं. ना इमाम हुसैन जैसी अजमत है और ना यजीद जैसी वकाहत है और ना यजीद जैसा किरदार है, लेकिन उमर इब्न साद वाला किरदार हमारी जिंदगियों में आ सकता है. है नहीं, आ सकता है. इस पे बात हो रही है. शरीयत ही कहते हैं कि हमें अपने हवाले से इस किरदार से डरना चाहिए. यानी शरीयत का कहना ये कि मुझे ना इस बात मुझे इत्मीनान है कि मैं हुसैन नहीं बन सकता, इस बात का भी इत्मीनान है कि मैं यजीद नहीं बन सकता, इतनी पस्ती में नहीं जा सकता. लेकिन हाँ, मैं जिस चीज़ से अपने लिए खौफजदा हूँ वो ये कि कहीं मैं उमर साद ना बन जाऊँ. वजह क्या है? उमर साद इमाम हुसैन को पहचानता था. उमर साद ने पहले मरहले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ क़याम पर आमादगी का इज़हार नहीं किया. लेकिन जब वो चीज़ के जिसकी उमर साद को आरजू थी, यानी वो दुनिया की ख्वाहिश, दुनिया की तलब, रई की हुकूमत, अब जब वो इस फैसले के दरमियान आया कि एक तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल और दूसरी तरफ रई की हुकूमत, ये वो दरमियानी रास्ता है कि जहाँ इंसान का अगर किरदार मजबूत ना हो, इंसान अपनी हकीकत से वाकिफ ना हो, इंसान हकीकत को उस तरह के जैसे समझना चाहिए ना समझे, तो क्या करता है? दुनिया को आखिरत के ऊपर तरजीह दे देता है. ये हम सब के लिए खुशदार है पैगाम. आज की आयत भी इसी हवाले से आएगी, उसको मैं बयान करता हूँ. बस तीन कैटेगरीज हैं इंसान: रुश्द वाला, राशिद है, रशीद है, इंसान राकिद है, और इंसान साकित है, सबूत करने वाला है. मुझे और आपको फैसला करना है कि हम कहाँ खड़े हैं. क्यों फैसला करना है? क्यों हम ये बातें इस तरह से करते हैं? इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम के करबला में जिन अफराद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया वो अहले रुश्द थे, और करबला के बाद आइम्मा अलैहिस्सलाम उसी रुश्द के रास्ते पर हैं. मगर इमाम हुसैन के बाद कोई भी इमाम जिस तरह के काम करना चाहता था वो काम नहीं कर सका. उसकी वजह क्या थी? कि इमामों के पास अहले रुश्द की कमी थी, या राकिद थे इमामों के सामने, रुके हुए थे, तवक्कुफ किए हुए अफराद थे, या सुकूत किए हुए अफराद. ये तारीख है. इसकी एक छोटी सी मिसाल: छठे इमाम के सामने एक शख्स आया और आने के बाद उसने कहा कि आप बयान कर क्यों नहीं करते? किस ज़माने की बात है? आलिम बयान करते हैं कि इमाम जब दर्स दिया करते थे 900 हल्क दर्स के हल्के इमाम के सामने बैठा करते थे. 900 हल्के, एक हलके के अंदर कई कई शागिर्द होते थे, 900 हलके, और शागिर्दों की तादाद 4000 उस ज़माने के अंदर. एक शख्स आया, कहता है आप क़याम कीजिए, मंसूर ने जुल्म किया हुआ है, आप अहले बैत का हक़ है, आप अहले बैत को क़याम करना चाहिए. इमाम इस शख्स का हाथ पकड़ कर लेकर आते हैं एक जगह, और वहाँ पे जानवर होते हैं, उन जानवरों को दिखाते हैं और कसम खाते हैं, और कसम खा कर कहते हैं कि बाखुदा अगर इस तादाद में हमारे मानने वाले चाहने वाले अहले रुश्द होते हम क़याम करते. ये रावी कहता है कि मैंने जब उन जानवरों को गिना तो उनकी तादाद 17 थी. किस ज़माने की बात है? 900 हल्के दर्स इमाम के सामने, यानी मस्जिद है, मस्जिद के अंदर इमाम बैठे हुए, 900 सर्किल हैं जहाँ पे सीख रहे हैं. और ये रावी कहता है सबकी ज़बानों पर काल सादिक काल अलबाकर, काल सादिक काल अलबाकर था, यानी आइम्मा अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल कर रहे थे. लेकिन उस ज़माने के अंदर इमाम ने कहा कि नहीं, ये 4000 अफराद रुश्द की उस कैफियत तक नहीं पहुंच पाए कि जाफर सादिक का साथ दे सके. ये तारीख का बहुत बड़ा पैगाम. ये इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन इल्म से अगला मरहला रुश्द का होता है, उसको अभी आयत में बयान करूंगा. ये रुश्द पे नहीं पहुंचे, ये रशीद नहीं बने, क्योंकि रशीद की कल आपके सामने जो तारीफ थोड़ी सी बयान की, खुदावंद आलम ने इब्राहिम को कहा, हमने इब्राहिम को रुश्द अता किया. उस रुश्द ने इब्राहिम के साथ क्या काम किया कि इब्राहिम माशरे के अंदर होने वाले फसाद को देखकर बैठ नहीं सके. رشد جہاں آتا ہے وہاں حساسیت آتی ہے، رشد جہاں آتا ہے وہاں احساس ذمہ داری آتی ہے، رشد جہاں آتا ہے وہاں جرأت آتی ہے۔ تمام چیزیں کل کی آیات کے اندر آپ کے سامنے بیان کی تھی میں نے کہ ابراہیم کے اندر حساسیت آئی جو معاشرے کے اندر انحراف تھا اس کو دیکھ کر، ابراہیم کے اندر احساس ذمہ داری اجاگر ہوا، ابراہیم کے اندر ان تمام لوگوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت آئی۔ ابراہیم کو معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، لیکن ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم اہل رشد تھے۔ کربلا کے اندر جو افراد امام کے ساتھ آئے وہ اہل رشد تھے، وہ اپنے رشد کو پا چکے تھے۔ جب ہی امام حسین علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیعت تم پر سے اٹھاتا ہوں، تم میں سے جس کو جانا ہو چلا جائے، لیکن چونکہ اہل رشد تھے جانے پہ تیار نہیں ہوئے۔ ان کی عقلیں، ان کا فہم اس جگہ تک پہنچ چکا تھا کہ سمجھ گئے تھے کہ حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا ہی مشیت الہی ہے۔ حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق یہ تک بیان کیا کہ تم میں سے جس کو جانا ہو جائے اپنی آخرت اور عاقبت کی بھی فکر نہ کرے، یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ چھوڑ کر چلا جائے گا تو اس کی عاقبت کیا ہوگی، میں تم سب کی جنت کا ضامن ہوں، کیونکہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے مالک ہیں، خود اپنی بیعت کو اٹھا رہے ہیں۔ لہذا اگر جانا ہو اور کوئی اس خوف سے رکا ہوا ہے تو یہ خوف بھی امام نے برطرف کر دیا۔ اس کے باوجود یہ اہل رشد وہاں رکے رہے، اور کیسے جملے انہوں نے ارشاد فرمائے، کسی نے کہا مولا آپ ایک زندگی کی بات کرتے ہیں، خدا 70 زندگیاں دے دے، 70 زندگیوں میں اس طرح سے مارا جاؤں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں، اس کے بعد میری لاش کو جلا دیا جائے، جلا کر ہوا میں مجھے بکھیر دیا جائے، پھر خدا دوبارہ زندہ کر دے، میں پھر آپ پر اپنی جان قربان کر۔ عزیزو یہ رشد کی کیفیت ہے۔ ہمیں کیوں اس مرحلے پر پہنچنا ہے؟ چونکہ امام حسین کے بعد کسی امام کے ساتھ ہی ایسا کام نہیں کر سکے، ابھی زمانے کے امام نے آنا ہے، ہم امام عصر کے منتظر ہیں انشاءاللہ، اور یقیناً ہم جیسی بھی کیفیت میں منتظر ہوں، لیکن امام زمانہ کے منتظر ہونے کا تو ہم سب کو یقین ہے کہ وہ ہمارے منتظر ہیں۔ مجھے اپنی کیفیت کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ میں واقعی منتظر ہوں یا نہیں ہوں، امام زمانہ کے منتظر ہونے میں مجھے شک نہیں ہے، وہ منتظر ہیں، وہ حالت انتظار میں کہ کب ان کے جد کے فرش پر آنے والے افراد ان کی طرف اپنے رخ کو پھیرتے ہیں، کب ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، کب ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، کب ان کی خاطر کچھ کرنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ بس عزیزوں ہمیں اہل رشد تک پہنچنا ہے تاکہ ہم زمانے کے امام کے ساتھ کام کر سکیں۔ یہ رشد اتنا اہم ہے اور اس تک پہنچنا اتنا اہم ہے کہ حضرت موسیٰ جو ایک برگزیدہ نبی ہیں، اول العزم انبیاء میں سے ہیں، پانچ بڑے انبیاء میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ ہیں، وہ اس رشد تک پہنچنے کے لیے جناب خضر کی ہمراہی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ جناب موسیٰ علم میں اپنے مقام پر ہیں، نبی خداوند عالم سے علم کسب کرتا ہے، لیکن اسی رشد کی منزل کو پانے کے لیے جناب موسیٰ حضرت خضر کی ہمراہی کرنے پہ تیار ہیں۔ قرآن کی آیت سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ جناب خضر تک پہنچتے ہیں اور ان کے بعد ان سے کہتے ہیں هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے ساتھ چلوں، آپ مجھے اپنے ساتھ چلانے پہ تیار ہیں تاکہ آپ مجھے وہ تعلیم دے سکیں کہ جس علم کے ذریعے سے آپ کو رشد حاصل ہوا ہے۔ جناب موسیٰ نے کس سے بیان کیا؟ خضر سے بیان کیا۔ اب یہاں پر یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، مما علمتا پر آ کے رکے نہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلنے پہ تیار ہوں تاکہ آپ مجھے وہ سکھائیں کہ جو آپ نے سیکھا ہے، کہا نہیں، مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے کہ جس علم کے ذریعے سے آپ رشد تک پہنچیں، رشد یعنی علم کا کمال ہے، آپ اس منزل تک پہنچیں، میں آپ کی پیروی کرنے پہ تیار۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کے اندر آیا حضرت موسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے ایک ولی کی پیروی پہ تیار ہونے تاکہ رشد کے مقام پر پہنچ سکیں۔ عزیزو سمجھیے گا، اس کا مطلب ہے مقام رشد اتنا اہم ہے کہ خدا اپنے ایک نبی کو کہتا ہے تم پیروی کرو، پیچھے پیچھے چلو، کس کے پیچھے چلو، جو صاحب رشد ہے۔ وہ صاحب رشد کون ہیں؟ وہ خضر ہیں۔ ان کے رشد کی اور راشدیت کی کیفیت کیا ہے؟ کہ ان حقائق سے واقف ہیں کہ جن حقائق سے موسیٰ بھی واقف نہیں، وہ موسیٰ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ علم رکھتے ہیں مگر بہت سے حقائق موسیٰ کے اوپر، حالانکہ موسیٰ نبی ہیں لیکن موسیٰ کے اوپر پوشیدہ ہیں، بہت سے حقائق سے موسیٰ واقف نہیں ہیں، जानते हैं, इसीलिए जैसे ही जनाब मूसा कहते हैं हलक तबिओका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, क्या मैं आपके पीछे चलूं, आपके साथ चलूं, आपकी पैरवी करूं कि जो आपके पास इल्म है और उस रुश्दा का आप पहुंचे मुझे भी दें। कहते हैं ए मूसा इन्नका लन तस्तती माया सबरा, ए मूसा मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। तवज्जो कीजिए, एक नबी को एक वली जनाब खिज्र ये बात करते हैं, नबी का सब्र एक इंसान आम के मुकाबले का सब्र नहीं है। यानी मैं और आप एक मरतबा सब्र के मरहले पर हैं, एक मरतबा एक नबी सब्र के मरहले पर है। नबी का सब्र बहुत बड़ा होता है, हम और आप नबी के सब्र के मुकाबले में सब्र नहीं कर सकते। लेकिन ये जो अहले रुश्द हैं, जो रशीद हैं, राशिद हैं, जनाब खिज्र जानते हैं कि मूसा हकायक से वाकिफ नहीं है, लिहाजा जो मैं काम करूंगा उनको देखकर इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। फौरन कहते हैं इन्नका लन तस्तती माया सब्र, ए मूसा मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। मूसा कहते हैं आप मुझे अपने साथ रखिए, इंशाल्लाह कि मुझे साबिरों में से पाएंगे। अब उसके बाद वो तीन वाकया जो पेश आते हैं वो मेरा मौलिद बहस नहीं है, क्योंकि मुझे रुश्द को बयान करना था, मैं अगली मंजिल की तरफ जाना चाह रहा हूँ। बस रुश्द की अहमियत हमें समझ में आई कि खुदा वंदे आलम अपने एक नबी को जो उलुल अज़्म अंबिया में से है उसको एक वली के एक ऐसे अहले रुश्द के हमरा करता है कि तुम इसके पीछे पीछे चलो, इसकी शागिर्दी करो ताकि ये तुम्हें रुश्द तक पहुँचा सके। ये रुश्द की अहमियत है। मैं और आप अहले रुश्द में से हैं या नहीं हैं, मुझे और आपको अहले रुश्द में से होना है, क्योंकि तीन कैटेगरीज बयान की, अहले रुश्द, अहले रुकूद राकिद रुक जाने वाले तवक्कुफ करने वाले, और अहले सुकूद। खुदा ना करे कि हम अहले सुकूद में से हों लेकिन हम मुमकिन है अहले रुकूद में से हों। अक्सर ऐसा होता है अजीज अल मोहतरम, इंसान मखसूसन थोड़ा सा माशरती मसाइल को बयान करूँ, ये मौजू ही माशरती मौजू है कि बाज़ औक़ात इंसान फ़िक़ही एतबार से दीन के इल्म के एतबार से हमारी अक्सरियत और रुकूद का शिकार है। दीन के इल्म के एतबार से हम लोग राकिद हैं, हम बहुत आगे नहीं बढ़ते, दीन के मामलात में हम आगे का सफ़र तय नहीं करते, जितना मालूम हुआ हुआ होता है उस पर काने हो जाते हैं। कनाअत मोमिन की जीनत कहा गया है, लेकिन कनाअत का चैप्टर कहीं और है, किसी और जगह कहा गया है। चूँकि एक चीज़ के हरीस को इमाम अली ने कहा कि एक चीज़ का हरीस ऐसा है जो कभी सैर नहीं हो सकता, और वो इल्म का हरीस है जो कभी सैर नहीं हो सकता। जिसके अंदर इल्म की हिर्स हो वो कभी सैर नहीं हो सकता, उसको जितना इल्म दिया जाए वो मजीद की बात करता है, वो कहता है और सिखाओ और बताओ। वजह क्या है, क्योंकि इल्म ख़त्म होने वाला नहीं है। आज के दौर में हम देख रहे हैं, आज की साइंस को आप देख लीजिए, आज भी नीम का पत्ता जो दरख्त नीम का लगता है, अरसा पहले सालों पहले इस नीम के पत्ते पर रिसर्च हो चुकी है, आज भी वही नीम का पत्ता लेबॉरेटरी के अंदर बहस का जरिया और तहकीक का जरिया है। वजह क्या है, वजह यह है कि नीम के पत्ते के अंदर ही, यानी एक पत्ते के अंदर खुदा ने इतनी सलाहियत रखी है कि उसके तमाम खवास को इंसान किसी भी मरहले पर आकर जान नहीं सका। जितना जितना इंसान के जानने का टूल बढ़ रहा है, अबजार में इजाफा होता जा रहा है, उसकी सलाहियत बढ़ती जा रही है, सोफिस्टिकेटेड अब्जार एपरेटस आते जा रहे हैं, उतना उतना कायनात के राज इंसान के ऊपर खुलते चले जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे अफराद बैठे हैं जो रिसर्च से वाबस्ता हैं, मिसम भाई हमारे पहले रिसर्च वाबस्ता हैं, इन चीज़ों को जानते हैं। आज भी ये चीज़ें, यानी एक नीम का पत्ता, तो नीम का पत्ता ख़त्म हो जानी चाहिए थी, इस पर रिसर्च आज भी वो लेबॉरेटरीज का हिस्सा है, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, नई बातें आ रही हैं। वजह क्या है, इल्म खुदावंदे आलम ने हत्ता इस एक पत्ते के अंदर इतना रखा है कि इंसान जैसे जैसे अपने जानने की सलाहियत को बढ़ा रहा है उसकी मालूमात में इजाफा होता चला जा रहा है। अब अगर एक पत्ता ऐसा है कि जिस पर अरसे से रिसर्च हो रही है और आज तक हो रही है और आइंदा आने वाले सालों में भी होती रहेगी, चूंकि एपरेटस बदलता चला जाएगा, उसकी जुजियात में जाता चला जाएगा इंसान, तो खुद सोचिए कि इस कायनात के अंदर खुदा ने कितना इल्म फैलाया होगा। इस कायनात को खुदा वंदे आलम ने जो अलीम और हकीम है कितनी इल्मी बुनियादों पर उस्तवार किया है। लिहाजा इंसान, इमाम अली ने कहा कि जो जानने वाला होता है, तालिब इल्म होता है, एक ऐसा हरीस होता है जो कभी सैर नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ रुकूद नज़र आता है, जुमूद नज़र आता है मामूलन दीनी मसाइल के सीखने में, दीन के मामलात को सीखने में। एक और गलत तर्ज तफक्कुर पाया जाता है, वो क्या है, वो ये कि भाई दीन के मामलात को ज़्यादा मत सीखो, जितना सीखोगे उतना अमल करना पड़ेगा। ये एक सोच है, जितना जानोगे उतना अमल करना पड़ेगा। तो क्या ना जानने से जान छुट जाएगी? अगर ना जानने से जान छुट जाए मत जानिए। لیکن اگر نہ جاننے سے آپ مزید گرفت میں آئیں تو پھر بہتر کیا ہے؟ جاننا بہتر ہے یا نہ جاننا بہتر ہے؟ پھر جاننا بہتر ہے. نہ جاننے سے جان نہیں چھوٹے گی. کیوں؟ کیونکہ جاہل کی دو قسمیں, جاہل ایک قاصر ہے, ایک مقصر ہے. قاصر کون ہے؟ کہ جس تک علم کا پہنچانے کا امکان ہی نہ ہو, دور دراز علاقے میں, صحرا کے اندر, کسی ایسے آئی لینڈ کو تصور کر لیجئے, جزیرے کو تصور کر لیجئے کہ جہاں انسانوں کا ایک قبیلہ رہتا ہو اور وہاں ابھی تک انسانوں کے قدم نہ پہنچے ہوں, کوئی اور وہاں نہ پہنچا ہو. اس قبیلے کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے, بتانے والا نہیں ہے. لہذا یہ لوگ قاصر ہیں, قاصر قصور سے, یعنی یہ نہیں جان سکتے. ان کے اوپر کوئی بار نہیں ہے. لیکن شہر میں رہنے والا کہ جس کے پاس تمام امکانات موجود ہیں, ہر محلے کے اندر مسجد موجود, ہر مسجد کے اندر عالم اور علماء موجود, ہر محلے میں علماء موجود, اور آج کے دور میں انٹرنیٹ کا دور ہے, واٹس اپ کا دور ہے, ان تمام چیزوں کے ذریعے سے آپ مسئلہ بیچ کر معلوم کر سکتے ہیں. شہروں کا رہنے والا عزیزان محترم نہیں بچ سکتا. یہاں پہ یہ سوچ صحیح نہیں ہے کہ جتنا جانو گے اتنا پھنسو گے. نہیں, یہاں پر آپ کو اپنی زندگی کو جان کر ہی طے کرنا ہوگا. اور خود قرآن میں خداوند عالم نے بھی بیان کیا, هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہذا لیکن انسان کی پہلی کیٹیگری اہل رشد میں سے ہے, دوسرا وہ گروہ ہے جو رکود کا شکار ہے, اور تیسرا اہل سقوط ہے. آئیے اس چیز کو سمجھیں کہ میں اور آپ اہل رشد میں سے ہیں یا نہیں ہیں. اس کا معیار بھی قرآن دے گا. کیوں بننا ہے اہل رشد میں سے؟ تاکہ امام کا ساتھ دے سکیں. ایک نبی کی مانند وہ رشد کو حاصل کرنے کے لیے ایک خضر کی پیروی کرنے پہ تیار ہے, اس مقام پر پہنچنے کے باوجود. کیا خصوصیات ہیں اہل رشد کی؟ قرآن کریم کی آیت ہے, سورہ حجرات کی آیت نمبر 7. اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمُ الرَّسُولِ, جان لو اس بات کو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ, اگر وہ تمہاری باتوں میں پیروی تمہاری کرتا, یعنی تمہاری بات کو سنتا, تو تم مشکل میں پڑ جاتے. یہ میرا جو موضوع ہے وہ یہاں سے شروع ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, لیکن خداوند عالم نے تم انسانوں کے لیے, مخصوصا مومنوں کے لیے, ایمان کو پسند کیا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت, آرائش, زیبائش قرار دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور اسی خدا نے جہاں ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا, تمہارے دلوں کی زینت ایمان کو قرار دیا, وہیں اس نے تمہارے دلوں کے لیے کفر, فسق اور نافرمانی کو اس نے کراہیت کا ذریعہ قرار دیا ہے. اولئک هم الراشدون, جن کے اندر یہ پانچ خصوصیات پائی جاتی ہیں, یہی اہل رشد ہیں, یہی راشد ہیں. پانچ خصوصیات. اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اور آپ اہل رشد میں سے ہیں یا نہیں. تو مجھے اور آپ کو ان پانچ خصوصیات کو اپنے اندر دیکھنا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کو خوبصورت تعبیر دے کر بیان کیا کہ اس آیت کے اندر دو چیزیں اثباتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں صفات ثبوتیہ, اور دو تین چیزیں سلبی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں صفات سلبیہ. خدا سے سلب کرتے ہیں, خدا مرکب نہیں ہے, خدا جسم نہیں رکھتا, خدا قدیم ہے, خدا قادر ہے, اثبات کرتے ہیں. جس چیز کو خدا مومن کے لیے اثبات کر رہا ہے, پہلی خصوصیت اگر جاننا چاہو اہل رشد میں سے ہو یا نہیں, پانچ چیزوں کو دیکھنا. تین نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر, اور دو ہونی چاہیے. دو کون سی ہونی چاہیے؟ حببہ الیکم الایمان, تمہارے دلوں میں جو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے وہ ایمان کی محبت ہونی چاہیے. تمہارے دلوں میں ایمان محبوب ہونا چاہیے. توجہ کیجئے گا, ایمان محبوب ہونا چاہیے. اب یہ خود بخود کہنے والی بات ہے کہ اگر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان محبوب ہوگا تو تم اہل رشد میں سے ہو جاؤ گے, تو پھر جو کل ایمان ہوگا اس کا محبوب ہونا بھی ضروری ہے. ایمان کی محبت, ایمان کا محبوب ہونا اہل رشد کی علامت, کل ایمان کا محبوب ہونا اہل رشد کی علامت. جو کل ایمان سے محبت کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ ایمان کی وجہ سے کرتا ہے. عزیزوں, بس اب ان پانچ چیزوں کو اپنے اندر دیکھنا ہے ہر انسان نے کہ آیا میرے اندر ایمان واقعی محبوبیت کی جگہ تک پہنچ پایا کہ نہیں پہنچا. ایمان میرا محبوب ہے یا نہیں ہے. اب محبوب کیا ہوتا ہے, محب کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے کہ جس کی خاطر محبت کرنے والا हर चीज को छोड़ने पे तैयार हो जाता है। आया मेरी जिंदगी के अंदर ईमान का वो मकाम है कि मैं ईमान की खातिर हर चीज को छोड़ने पे तैयार हो जाता हूँ, या नहीं बरअक्स है कि मैं ईमान को अपने दोस्तों की दोस्ती पर छोड़ने पे तैयार हो जाता हूँ। यह हमें आपने देखना है। पहली खसूसियत अहले रुश्द की, उलाइका हुमुर राशिदून, ये वो गुरु है जो राशिद है। इब्राहिम को रुश्द अता किया, मूसा रुश्द की तलाश में निकले, अहले इमाम हुसैन के साथ देने वाले अहले रुश्द इमाम ज़माना के साथ देने वाले अहले रुश्द होंगे। रुश्द की कैफियत को खुदा ने इस आयत में बयान किया। पहली खसूसियत हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहू फी क़ुलूबिकुम, फ़क़त महबूब नहीं हुआ है बल्कि तुम्हारे दिल को ईमान के जरिए से खुदा ने जीनत और आराइश बख्शी है। यानी मेरे दिल की आराइश ईमान के जरिए से हुई है। मेरे दिल की दीवारों में अगर कोई झांकेगा, उसको मेरे दिल की दीवारों के अंदर ईमान की तज़ीन और आराइश नजर आनी चाहिए। अगर मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल की दीवार में ईमान की तज़ीन और आराइश है, ईमान का नक्श है, ईमान के नक्श निगार हैं, तो मैं अहले रुश्द में से हूँ। यह दूसरी खसूसियत। तीसरी खसूसियत क्या है जो अब नहीं होनी चाहिए? वकर रहा इलैकुमुल कुफ्र, कुफ्र से बेजारी, कि यकीनन हम सब इस मरहले पर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या यहाँ बैठने वाला कोई मोमिन, और जिस तक की आवाज आ रही हो, वो कुफ्र को पसंद करता हो, कोई इसमें दो राय नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वकर रहा इलैकुमुल कुफ्र, कुफ्र से बेजारी, इसको तुम्हारे लिए बेजारी का जरिया करार दिया, लेकिन अगले मराहिल फिर हम सब के लिए हो सकते हैं। वकर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इसयान, फकत कुफ्र से बेजारी नहीं करनी, कुफ्र के साथ साथ फिस्क से और उसके साथ नाफरमानी इलाही से भी बेजारी करनी। अब अगर तुम्हें, यानी दो चीजें मुझे और आपको चाहिए, तो तीसरी को मैं निकाल रहा हूं, कुरान के अंदर मौजूद है, निकालने से मुराद ये कि मैं इसको अपने और आपके बारे में कंसीडर ही नहीं कर रहा, कि यकीनन हम और आप अल्लाह के करम से, उसी ने हमें इस दुनिया में ईमान के साथ भेजा है, विलायत अहले बैत के साथ भेजा है, इसी विलायत का तकाजा यही है कि हम हरगिज भी कुफ्र के साथ कोई मुताबिकत नहीं रख सकते, कुफ्र को पसंद नहीं कर सकते, कुफ्र किसी भी तरह का हो हम उसके खिलाफ हैं। अब दो खसूसियात मुझे अपने अंदर रखनी है, दो खसूसियात को अपने अंदर से दूर करना है। पहली खसूसियत, मुझे ईमान को अपना महबूब करार देना है, मुझे अपने दिल की आराइश को ईमान के जरिए से करना है। यानी मेरे दिल के अंदर जब कोई झांके तो उसको मेरे दिल की दीवारों पर दुनिया की गलीज मोहब्बत नजर ना आए, ईमान की मोहब्बत नजर आए, और उसके साथ मुझे फिस्क से, अब फिस्क को थोड़ा सा बयान करता हूँ, मुझे फिस्क से और इसयान से, नाफरमानी इलाही से, यानी गुनाह, सादा अल्फाज में गुनाह से बेजारी होनी चाहिए। ये दो चार मेयारात हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, अगर ये कैफियत पैदा हो गई, ये राशिद हैं, यही रुश्द पाने वाले हैं, यानी ये राशिद हैं का क्या मतलब है? अगर ये चार खसूसियात मेरे अंदर आ गई एक तावीर के मुताबिक, तो जिनके अंदर ये चार कैफियात आ गई, या इन पांच की बात करूं, पांच कैफियात हैं, वो इस पर अमल करते हैं, तो गोया ये अपनी जिंदगी में मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने वाले हैं, गोया ये मकाम में, मकाम इब्राहिम तक पहुंचने वाले अफराद हैं। क्यों? क्योंकि मकाम इब्राहिम क्या था? रुश्द का मकाम है। हमने इब्राहिम को रुश्द अता किया है, और रुश्द की कैफियत खुदा बयान कर रहा है। ये पांच खसूसियात। बस अजीजों, मुझे और आपको अपनी जिंदगी में अब दो चीजें देखनी है कि ईमान कितना महबूब है। हकीकत पसंदी से चलते हैं, थोड़ा सा हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हैं। चूंकि इंसान अगर हकीकत पसंदी का सामना करे तो उसके लिए पलटना आसान होता है। हुर ने हकीकत पसंदी का सामना किया, पहचान लिया कि मुझसे बहुत बड़ी कोताही हुई, और उस कोताही के बाद उसकी इस्लाह की कोशिश की, नतीजे में हुर को हुसैन की आगोश मयस्सर आ गई। इंसान जब हकीकत पसंदी से अमल करता है, हकीकत पसंदी पर आता है, तो फिर नतीजे में क्या होता है? खुदा की तरफ से तौफीकात के दरवाजे इंसान पर खुलते हैं। लेकिन वो इंसान जो हकीकत पसंदी पर नहीं आता, अपने आप को बहलावे में रखता है, अपने आप को धोखे में रखता है, फिर वो या काजी शुरै की तरह बन जाता है, या उमर इब्ने साद की तरह बन जाता है, हुर की तरह नहीं बन पाता। मुझे और आपको देखना है, हम अहले रुश्द में से हैं या नहीं, ईमान हमें महबूब है या नहीं। ईमान की अलामतें हैं। ईमान किसको कहा गया? यानी खुदावंद आलम पर ईमान, रसूल अल्लाह पर ईमान, आखरत पर ईमान, रोज़े जज़ा पर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अहले बैत पर ईमान। अब इस ईमान की मेरी और आपकी ज़िंदगी में अहमियत कितनी है, इस आयत में ये नहीं कहा कि जो अहले रुश्द होते हैं वो ईमान को फजीलत देते हैं, कहा नहीं, महबूब रखते हैं। अब महबूब वही है कि उसके राह में हर चीज को कुर्बान किया जा सके। सादा अल्फाज में खुदा बंदे आलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के महबूब हैं। खुदा बंदे आलम इमाम हुसैन का महबूब, इमाम हुसैन ने खुदा को महबूब करार दिया। जब इमाम हुसैन को खुदा बंदे आलम को इमाम हुसैन ने महबूब करार दिया, अपनी इस महबूब की राह में हर तरह की कुर्बानी देने पे तैयार हो गए, क्योंकि महबूब ऐसा है, महबूब की मोहब्बत का तकाजा ऐसा है। अगर ईमान मेरा महबूब हो गया कि जो कुरान की आयत कह रही है, हब्बबा इलैकुमुल ईमान, इस ईमान को तुम्हारा महबूब करार दिया और तुम्हारे दिल को इसी ईमान के जरिए से आराइश की, जीनत दी, तुम्हारे दिल की जो रौनक है इस ईमान के जरिए से, मुझे और आपको अपने नफ्स में झांकना है अजीजों, कि आया वाकई ईमान मेरा और आपका महबूब है या नहीं। अगर मेरा और आपका ईमान महबूब है तो मेरा किरदार, आपका किरदार उस कुल ईमान की तरह होगा कि जो अली मुर्तज़ा हैं, जो रातों की तारीकी में खुदा बंदे आलम की बारगाह में पूरी रात खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए कहते हैं, मा अबदना का हक इबादत, परवरदिगार तेरी इबादत का जो हक था वो अली से अदा नहीं हो सकता। अब अगर ईमान महबूब है तो मेरे ईमान पर अगर कोई चोट पड़ रही हो तो चूंकि महबूब है, महबूब का दिफा किया जाता है, तो मैं ईमान को बचाने की खातिर मैदान अमल में आता हूं कि नहीं आता, मैं मैदान अमल में कदम रखता हूं कि नहीं रखता। खुदा वंदे आलम का दीन महबूब था इमाम हुसैन को, ये ईमान महबूब था इमाम हुसैन को, इस दीन के ऊपर आंच आना शुरू हुई। यजीद जैसा शख्स खिलाफत पर बैठ गया, इमाम हुसैन को चूंकि ये दीन महबूब था, इमाम हुसैन ने क्या किया, अपने इस महबूब की खातिर जो दीन है, ईमान है जिसको खुदा बंदे आलम ने करार दिया है, इसकी खातिर अपना पूरा का पूरा घराना लेकर निकल आए। मेरे और आपके सामने भी अजीजान मोहतरम बाज़ औक़ात ईमान के ऊपर चोट लग रही होती है। मोमिनों के ईमान को ईमान के जरिए से ही ईमान की बातें करके ही खराब किया जा रहा होता है, ऐसा होता है, नहीं होता। ये बात तारीख के अंदर सब्त हो गई कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने वाले खुद इमाम अली के मुकाबले में कुरान लेकर आए थे। जो कुरान लेकर इमाम अली के मुकाबले में आए थे, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर अली मुर्तज़ा का मुकाबला कुरान से किया जा सकता है, उस कुरान के जरिए से कि जो ज़ाहिरी सूरत में मौजूद था, अली जैसे इमाम को जाहिरी पसपाई पर मजबूर किया जा सकता है, तो फिर इसका मतलब है ईमान का मुकाबला ईमान से किया जा सकता है, यानी ईमान का मुकाबला ईमान नुमा बहसों से किया जा सकता है। ईमान नुमा बहसें जो की जाती हैं मिंबर पर बैठकर, मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर ईमान की गुफ्तगू, कुल ईमान की गुफ्तगू की जाती है, मगर उसी चीज़ के जरिए से ईमान पर चोट लगाई जा रही होती है। ये हम सबको तकाजा है, हम सबको देखना है। लिहाजा अगर हम अहले रुश्द में से हैं तो हमें ईमान महबूब होगा, हम अहले रुश्द में से हैं तो हमारे दिल के अंदर ईमान की रौनक होगी, हमारा दिल ईमान की रौनक से आबाद होगा। अगर हम अहले रुश्द में से हैं तो हमें फिस्क व फुजूर से नफरत व बेजारी होगी। यजीद कौन था, इमाम हुसैन ने क्या कहा, यजीद कौन है, मुअलिनुम बिलफिस्क, ये अलानी फिस्क करता है। क्या फिस्क था, किस फिस्क का शिकार था वो कैसा फासिक शख्स था, वो अलानी शराब पीता था, अलानी गुनाह करता था, नाजायज रवाबित रखता था, हुरमतों को पामाल करता था, हलाल खुदा को हराम, हराम खुदा को हलाल करने की कोशिश कर रहा था, कुछ जगहों पर उसने किया था। इसको इमाम हुसैन ने कहा मुअलिनुम बिलफिस्क, यानी इमाम हुसैन ने एक मेयार दिया, जहां खुदा की लगाई हुई हुदूद को पामाल किया जा रहा हो, समझ जाओ कि वहां फिस्क अंजाम पा रहा है। जहां खुदा की हुदूद को पामाल किया जा रहा हो, खुदा बंदे आलम ने हुदूद लगाई है, खुदा बंदे आलम ने शरीयत के उसूल सिखाए, खुदा बंदे आलम ने हर चीज की को एक हद के अंदर रखा है, लिहाजा जहां कहीं हुदूद इलाही को पामाल किया जा रहा हो, समझ जाओ या फिस्क पर अमल हो रहा है, और फिस्क को खुदा बंदे आलम ने मोमिन की बेजारी का जरिया करार दिया। जो अहले रुश्द है वो अपनी आंखों के सामने फिस्क को, फजूर को होता हुआ देखेगा, तो अगर अहले रुश्द होगा तो साकित, नहीं होगा, जैसे इब्राहिम साकित नहीं हुए, जैसे मूसा साकित नहीं हुए। मूसा के सामने जनाब खिजर के चंद काम आए, जनाब मूसा ने चूंकि इल्म नहीं रखते थे उन कामों का और उन जगहों पर एतराज करना जायज बनता था, उन्होंने एतराज किया, हालांकि पहले उस्ताद माना था, जनाब खिजर को उस्ताद मान कर आए थे कि आप सिखाइए, मेरे उस्ताद हैं। तो उस्ताद के सामने ताबुद होता है, ताजीम होती है, तस्लीम किया जाता है। लेकिन चूंकि काम ऐसा है कि जनाब खिजर ने जनाब मूसा के सामने कश्ती में सुराख किया, ये काम बुरा था, लिहाजा जनाब मूसा ने फौरन पलट कर कहा कि ये कैसा अजीब काम किया आपने, हालांकि उस्ताद मान के आए थे, ये मान के आए थे कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये मानकर आए थे कि आप पहले रुश्त में से, मैं उस रुश्त को आपसे हासिल करूंगा। लेकिन काम अजीब था, तवज्जो कीजिएगा, मैं किसी नुक्ते की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, काम अजीब था, वो काम नहीं होना चाहिए था जाहिरी तौर पर, लिहाजा जनाब मूसा ने उस काम के ऊपर एतराज किया, उनका एतराज बिल्कुल बजाय। अगर जनाब मूसा एतराज न करते तो जनाब मूसा की खामोशी खुद काबिल एतराज थी कि मूसा तुम्हारे सामने एक बुरा काम अंजाम पाया, तुम खामोश रह गए। जनाब मूसा को चूंकि हिकमत का इल्म नहीं है, वहां पर जनाब मूसा को आवाज उठानी चाहिए थी, बस जनाब मूसा ने आवाज उठाई और जनाब खिजर ने इसकी हिकमत को बाद में बयान किया। इसी तरह एक बच्चे को मार दिया, इसी तरह दीवार को बना दिया। बस अजीजों, अहले रुश्द अगर उसके सामने फिस्क व फुजूर फसाद अंजाम पा रहा हो तो अहले रुश्द कभी भी साकित नहीं हो सकता। मूसा हमें अपने पैगाम इस दर्स के अंदर, इस आयत के अंदर पैगाम दे रहे हैं कि मैं जिसे अहले रुश्द मानकर आया, उस्ताद मानकर आया, उसके मर्तबे को अपने आप से अजीम मानकर आया, लेकिन जब उसका काम अजीब निकला, जब उसका काम ऐसा निकला जो नहीं होना चाहिए था, जिससे फसाद फैल रहा था, मैंने आवाज उठाई, तो मबादा तुम्हारे सामने फिस्क व फुजूर अलनी हो रहा हो, तुम आवाज ना उठाओ। ऐसा ना हो ये फिस्क व फुजूर तुम्हारे महलों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारी मस्जिदों में, तुम्हारी इमाम बारगाहों में आ गया हो और तुम इसके खिलाफ आवाज ना उठाओ। मैंने अपने उस्ताद पर आवाज उठाई, मैंने अपने उस्ताद के खिलाफ बात की है, मैंने अपने उस्ताद पर एतराज किया है, जिसको मैंने मुसल्लम उस्ताद तस्लीम किया है। तवज्जो कीजिएगा, लिहाजा जो दो खसूसियात हमारे अंदर होनी चाहिए, ईमान महबूब होना चाहिए, हमारे दिल की जीनत ईमान के जरिए से, और दो खसूसियात हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्या? कि हमें अहले फिस्क से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, हमें अहले इसयान से, नाफरमान लोगों से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने इसको रुश्द का जरिया करार दिया है। मैं और आप अजीजों मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, सोसाइटी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, हम और आप अपनी दोस्तियों के अंदर मामूलन ये कर रहे होते हैं कि अपने सामने अफराद को गुनाह करते हुए देखते भी हैं, फसाद में मुब्तला होता हुआ देखते भी हैं, मगर आवाज नहीं उठाते। खुदा बंदे आलम ने हजरत मूसा से एक सवाल किया, हजरत मूसा नबी है खुदा, हजरत मूसा से सवाल किया, ए मूसा तुमने आज तक कोई काम मेरे लिए अंजाम दिया है? हल अमल तली अमला, ए मूसा मेरे लिए कोई काम अंजाम दिया? सवाल तवज्जो कीजिएगा खुदावंद आलम का है, किससे है? मूसा से, मुझसे और आपसे। खुदावंद आलम ये सवाल करे तो सवाल बनता है कि मेरे लिए कभी कुछ किया है? एक नबी से खुदा सवाल करे, हल अमल तली अमला, मूसा मेरे लिए कभी कुछ किया है? हजरत मूसा ने फौरन जवाब दिया, बारे ला सल्लई तो लक वसुम तो लक वसदका तो लग व जुकर तो लग, बारे ला चार काम हैं जो तेरी खातिर किए। क्या काम किए मूसा? मैंने तेरी खातिर नमाज पढ़ी, मैंने तेरी खातिर रोज़ा रखा, मैंने तेरी खातिर सदका किया और मैंने तेरी खातिर जिक्र किया, तेरा जिक्र करता हूँ। खुदावंद आलम ने पलट कर फौरन जवाब दिया, मूसा अम्मा सला तो फ़ाइलई का बुरहान व अम्मा सुम तो फलक जुन्ना व अम्मा सदका तो फलक जिल्लुन व अम्मा जिक्र फलक नूर। ए मूसा जिस नमाज को कह रहे हो कि मेरे लिए अंजाम दी, इस नमाज का फायदा खुद तुम्हें पहुंचेगा, ये नमाज कयामत में तुम्हारी दलील बनकर सामने आएगी। जिस रोजे को कह रहे हो तुमने मेरी खातिर अंजाम दिया, ये रोजा कयामत के दिन आतिश जहन्नम से तुम्हारी ढाल बन जाएगा। जिस सदके को तुम कह रहे हो तेरी खातिर अंजाम दिया है, ये सदका तुम्हारे लिए छाऊं का काम करेगा, आसमान जहां कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा, ये सदका साया बनकर आ जाएगा। और जिस जिक्र को कह रहे हो मेरी खातिर किया, ये जिक्र कब्र बरज़ख और आलम आखरत में तुम्हारा नूर बनकर तुम्हारे आगे आगे चलेगा। इन चारों काम खुदा ने गिनवा दिए, जो मूसा ने कहा तेरी खातिर किए, खुदा ने कहा ये तमाम के तमाम काम तुमने अपनी खातिर किए। फिर खुदा ने पूछा फ़ाई अमलिन अमिलतली, मेरे लिए क्या किया? खुदा का सवाल है। मूसा परेशान हुए, बारे ला क्या करूँ तेरी खातिर, کیسے کام کروں گا جس کو تو کہہ کے تیری خاطر ہے؟ خدا نے کہا یا موسیٰ حل والیت علی ولی یا و آدیت علی عدو، اے موسیٰ کیا کبھی میری خاطر میرے کسی دوست سے دوستی اور میرے کسی دشمن سے دشمنی کی ہے؟ کبھی میری خاطر حل والیت علی ولی یا و آدیت علی عدو، کیا میری خاطر دوستی اور دشمنی کی ہے؟ میری خاطر مجھ کو محور بنا کر اپنے تعلقات کو استوار کیا ہے؟ یا موسیٰ تمہاری زندگی کے تعلقات کا محور تمہاری دنیا ہے. فعلم موسیٰ یا موسیٰ جان گئے ان افضل الدین الحب للہ والبغض للہ، یا موسیٰ کو خبر ہوئی کہ افضل دین یہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر نفرت کی جائے. یہ اسی آیت کی تشریح ہے، کر رہا الیکم الفسوق کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ اس نے کفر کو فسوق کو اور عصیان کو تمہارے لیے بیزاری کا ذریعہ قرار دیا. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. انہی معیارات کے اوپر عزیزان محترم رسول اللہ نے اپنی زندگی کو استوار کیا. امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا دعا کے اندر، پروردگار تیری آخری نبی محمد مصطفیٰ وہ ہیں، درود کہ جنہوں نے تیری خاطر، کس کی خاطر؟ تیری خاطر اپنے نزدیک والوں کو دور کیا، دور والوں کو اپنے سینے سے لگائے. اپنے نزدیک والوں کو دور کیا، رسول اللہ کے خاندان کے بہت سے افراد رسول اللہ کے ساتھ نہیں آئے، رسول اللہ نے ان کی دوری کو برداشت کیا. رسول اللہ کا بلال سے کیا تعلق بنتا تھا، رسول اللہ نے بلال کو آغوش سے لگایا، رسول اللہ نے اویس کو قبول کیا، رسول اللہ نے عمار کو قبول کیا. یعنی خاندانی تعلقات کی بنیاد پر نہیں، یہ بہت اہم نقطہ اجتماعی نقطہ بیان کر رہا ہوں. اسی آیت کے ذیل میں اولائک ہم الراشدون کے ذیل میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ راشد کون ہے، کہ جس کی زندگی کا محور کیا ہوتا ہے کہ اہل فسق و فجور سے اس کو کوئی محبت نہیں ہوتی چاہے اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اہل فسق و فجور کو پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا چے جائے کہ اس کا ساتھ دینے کی بات کی جائے. عزیزوں بس ہماری بہت سے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ان معیارات کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کچھ حد تک ناکام ہو جاتے ہیں. ہماری دوستیوں کا محور، ہماری رشتہ داریوں کا محور ہماری زندگی ہوتی ہے، ہمارے جس سے تعلقات اچھے چل رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمارے مفاد وابستہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری زندگیاں اس پر چل رہی ہوتی ہیں. آئندہ آنے والی گفتگو انشاءاللہ اس پر اور تفصیل سے ہو پائے گی. بس آج کے دن ہم نے ایک معیار سمجھا کہ اگر ہمیں اہل رشد میں سے ہونا ہے تو ہمیں کچھ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کچھ خصوصیات سے دوری اختیار کرنی ہے. وہ خصوصیات جو پیدا کرنی ہیں وہ کون سی ہیں؟ حببا الیکم الایمان، ایمان محبوب ہو جائے، ایمان کو تم پسند کرو، ایمان تمہاری محبت میں تبدیل ہو جائے. وَزَيَّنَ قُلُوبَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کی زینت ایمان سے ہو، تمہارے دلوں کے اندر سوائے ایمان کے کچھ اور نظر نہ آئے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تین چیزوں سے بیزاری، کفر، فسوق اور نافرمانی، گناہ سے بیزاری. اگر یہ تین چیزیں ہمارے اندر آ گئیں تو اولئک هم الراشدون، ہم اہل رشد میں سے ہیں. اگر ہم اہل رشد میں سے ہو گئے تو زمانے کے امام تک ہمارا سفر آسان ہو جائے گا، کیونکہ امام زمانہ کا ساتھ دینے کے قابل وہی ہو پائیں گے جو اہل رشد ہوں گے. اہل رشد وہی خصوصیات جو ابراہیم کی ہیں، کہ اہل رشد جرت رکھتا ہے معاشرے کی اصلاح کی، جیسے جناب ابراہیم نے جرت دکھائی. اہل رشد کربلا کے اصحاب، کہ لشکر بہت قلیل ہے لیکن اس کے باوجود اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، جانتے ہیں کہ ہم یزید کو اور یزیدیت کو اس کربلا کے میدان میں ایسا گھیر کے ماریں گے کہ قیامت تک پھر کبھی کوئی یزید حسینیوں سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکے گا. یہ اہل رشد تھے، انہیں یقین تھا اپنی رشادت کا، اپنی رشد کا، انہوں نے وہ کام کر کے دیا کہ واقعی کربلا کے اندر ایسا گھیرا یزید کو کہ اس کے بعد کسی یزیدی کی ہمت نہیں ہے کہ حسینیوں سے بیعت مانگ سکے. آج یزیدی کوشش کر رہے ہیں اہل یمن کے حسینیوں سے بیعت کا سوال ہی تو ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دور کا یزید اہل یمن سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، تسلیم ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، مار رہا ہے، ہر طرح کا حملہ کر رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ان یمنیوں نے کہ جن کے لیے امام حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، ये मुझ जैसा है कौन अजीजों, इसको करबला के बाद तलाश करना है, याद रखिएगा। ये बातें जब की जाती हैं बाज़ लोग कहते हैं मुबालगा हो गया, मुबालगा नहीं है। मिसली इमाम हुसैन ने अपने से पहले वालों के लिए बयान नहीं किया था, इमाम ने कहा था मिसली ला युबायो युबायो मुजारे का सीगा है कि आइंदा आने वाले ज़माने में मुझ जैसे इस जैसे की बयत नहीं करेंगे। आज के दौर में हम देख रहे हैं बहरैनियों से यही यजीदियत सवाल कर रही है बयत का, वही यजीदियत जो यमन में कर रही है, वही यजीदियत बहरैनियों पर जुल्म कर रही है, बहरैन के मोमिनीन भी तस्लीम नहीं हो रहे, नाइजीरिया के अंदर भी यही यजीदियत कारफरमा, इसी का पैसा चल रहा है, इसी का हुक्म चल रहा है, इसी के हुक्म पर नाइजीरिया के मोमिनों पर हर साल मुहर्रम और सफर में मुश्किलात आती हैं। उनका वो रहबर खुदा उसे आज़ादी नसीब फरमाए, शेख इब्राहिम ज़कज़की उनको सेहत अता फरमाए, लेकिन ये उसी रास्ते पर चलने वाले हैं। क्यों? चूँकि उलाइका हुमुर राशिदून, ये रुश्द की मंजिल पर आ गए, ये रुश्द की उस मंजिल पर आ गए, इनको समझ में आ गया कि रास्ता हुसैनियत से महदवियत तक पहुँचने का वाहिद रास्ता ये है कि हम हुसैनियत से सफ़र तय करें, शुरू करें, महदवियत तक पहुँच जाएँ। आज वो उस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा आपका सफ़र भी जारी है अजीज़ों। बस हमने इमाम असर का साथ इसी रुश्द के साथ देना है अजीज़ों। जब अहले रुश्द ना हो तो फिर क्या होता है, मुश्किलात आती हैं। जो राशिदीन करबला में थे उन्होंने इमाम हुसैन पर जान कुर्बान कर दी, उस मकाम पर पहुंचे कि जिनके लिए हम और आप सलाम करके कहते हैं तिब तुम वताबत अर्ज़ुल लतीफ़ीहा तुफिन तुम, ऐ अहले रुश्द तुम उस मकाम पर पहुंचे, तुमने वो पाकिजगी हासिल की कि जिस ज़मीन पर तुम्हारे वजूद को दफना दिया गया वो ज़मीन तुम्हारे वजूद की वजह से पाक हो गई। लेकिन ये इमाम हुसैन के साथ चलने वाले थे, लेकिन जनाब ज़ैनब ने जब सफ़र शुरू किया है, सैयद सज्जाद का जब सफ़र शुरू हुआ है, तो अब यहाँ साथ देने वाले नहीं थे अजीज। ये वो सफ़र है जो बहुत कठिन सफ़र है। करबला से जब कूफा काफिला पहुँचा, कल मैंने आपके सामने बयान किया कि अब इस कूफा के अंदर अहले रुश्द की कमी है, उसी की वजह से ये ज़ैनब को बरहना सर देख रहे हैं मगर आगे बढ़ के जुर्रत नहीं करते कि इस नबी जादी के सर पर रिदा रख दें। अजीज़ों जब काफिला पहुंचा है कूफा, रिवायत में बयान हुआ कि रात का वक्त हो चुका था, सूरज ढल चुका था, इब्ने ज़ियाद को खबर दी गई कि असीरों को लाया गया है, मलऊन ने कहा कि इनको अभी दरवाज़े कूफा पर फसील कूफा पर खड़ा कर दो, इन्हें सुबह जब होगी तो कूफा में लेकर आएंगे। क्यों सुबह तक ठहराया कूफा की फसील पर? ताकि जब सुबह हो जाए लोग बेदार हो जाएं, उसके बाद हम शहर को आराइश करेंगे, सजाएंगे, उसके बाद इनका तमाशा बनाते हुए इन्हें कूफा में लेकर जाए। अजीज़ों अहले बैत के असीरों को ठहराया गया कूफा की फसील के ऊपर, सुबह हुई। एक रावी बयान करता है कि मैं हज के काफिले से वापस आ रहा था, जब मैं हज से वापस आया कूफा में दाखिल हुआ, इत्तेफाक से उसका दिन वही दिन था जिस दिन अहले कूफा को अहले बैत के असीरों को काफिले को लाया गया कूफा में। कहता है मैंने देखा कि आज बड़ी आम तातील सी है कूफे के अंदर, लोग काम और कारोबार नहीं कर रहे, शहर कूफा को सजाया गया है। मैंने पूछा खैर तो है, आज क्या बात है, आज किसी ईद का दिन तो नहीं है, ये शहर कूफा क्यों सजा हुआ है? खबर देने वाले ने कहा कि आज के दिन कुछ खवारिज ने ये अपने खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ क़याम किया था, उन खवारिज के घर वालों को कैदी बनाकर लाया जा रहा है। कहता मैं खड़ा हो गया तमाशा देखने के लिए, लेकिन अब जब मैंने देखा कि कुछ नेज़े हैं, उन नेज़ों पर कुछ सर बुलंद हैं, जब मेरी निगाह सरे हुसैन पर पड़ी पहचानता था, कहता मैं तड़प के रह गया कि किसको खवारिज कह रहे हैं, ये तो रसूल की आगोश का पाला है। कहता मेरी निगाह पड़ी सैयद सज्जाद के ऊपर, मैंने देखा कि उन्हें बेकजावा ऊंट पर सवार किया गया है, इतने कस कर उन्हें बांधा गया है कि उनकी पिंडलियों से खून बह रहा। कहता मैं तड़प गया, मैं परेशान हो गया कि क्या हो गया चंद दिनों के अंदर के अहले बैत रसूल को कहा जा रहा है खवारिज, ये अहले बैत रसूल अभी आगे जाते हैं। कहता है ये रावी बयान करता है कि बीबी उम्मे कुलसूम की आवाज आई, अहले कूफा अपनी आंखों को नीचे झुका लो, तुम्हें हया नहीं आती कि हम इस कूफा के अंदर इस तरह आए कि हमारे सरों पर रिदा नहीं है, हम आले रसूल हैं। छतों पे खड़ी हुई खवातीन में से किसी ने पूछा अय्या उसारिन अंतुन्ना, तुम कौन से असीर हो कि जो कहते हो कि हमारे खुले हुए सरों को ना देखो? बीबी उम्मे कुलसूम कहती हैं नहनु उसारा अहले आले मोहम्मद, हम आले मोहम्मद के असीर हैं। अजीजों रिवायत बयान करते हुए रावी बयान करता है अहले कूफा जहां से ये सर गुजरते थे बाज लोग खड़े होके रो रहे थे, बाज लोग इस सर को पत्थर मार रहे थे। बस इसमें एक रावी है जिसका नाम मुस्लिम बयान किया गया, दारुल अमारा को तामीर करने के लिए उसे लाया गया। कहते मैंने जब आहो मैंने शोर सुना इस कूफा के अंदर, मैंने सुना कि लोग शोर कर रहे हैं, आहो फुगा है, आवाज आ रही है। मैंने पूछा क्या बात है, मुझे भी खबर यही दी गई कि बागियों का एक गिरोह है जो कूफा में आ रहा है। मैं भी अपने साथ निकला, लोगों के साथ निकला। जब बाहर गया मैंने पूछा ये कौन से कैदी हैं, किन को कहा गया बागी? कहा ये हुसैन इब्ने अली हैं जिनको बागी कहा गया। ये मुस्लिम पहचानता था इमाम हुसैन को। कहता है मैंने पूछा कौन हुसैन? अली का बेटा? कहते हैं हाँ अली का बेटा। कहा जिसकी माँ फातिमा है? कहते हैं हाँ जिसकी माँ फातिमा है। कहता है मुझसे बर्दाश्त ना हुआ लेकिन लोग खुशी का इजहार कर रहे थे, मैं मुंतजर रहा, ये लोग गए, मैंने अपना सरो सीना पीटना शुरू कर दिया। मैंने इस हालत में देखा कि ये कैदियों को लाया गया है और उसके बाद लोग इनका तमाशा बना रहे हैं। मैंने जनाबे ज़ैनब को इस हालत में बैन करते हुए देखा कि जनाबे ज़ैनब अपने भाई हुसैन को मुखातिब करके कहती हैं, ऐ मेरे भाई हुसैन, काश सैयद सज्जाद को असीर होते हुए देख ले, मेरे बेटे सैयद सज्जाद के अंदर हिम्मत और ताकत ना बची थी। ऐ मेरे भाई हुसैन, जब सैयद सज्जाद को भेज कर खींचा जाता था, जब उसे ताजियाना मारा जाता था, सैयद सज्जाद तड़प कर कहता था वाह अबता, ऐ मेरे बाबा। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन क़लबी अनक़लबी बारिलासल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारिला जो तो परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। दुनिया में जाए कहीं फर्श अज़ा बेचा, उस फर्श अज़ा को बिछाने वालों, उस फर्श पर आने वालों को जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम मुसलमानों की दुनिया में जहाँ कहीं भी वो मुश्किल का शिकार है, मुश्किल को आसान फरमा। यमन, नाइजेरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, लबनान, इराक, मखसूसन कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। तमाम मराजान को सेहत सलामती तो और इनायत फरमा। अपने आखिरी हुज्जत के ज़हूर में तअज़ील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर रहीम।